नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ज्यों-ज्यों कथा बढ़ती है त्यों त्यों पांडवों के भाव समझ में आते। अरे भाई सबसे बड़ी बात थी कि पांडव लोग दोबारा जुआ क्यों खेले। ये बात स्वयं पांडवों को भी समझ में नहीं आई पूरी पूरी। द्रौपदी ने, भीम ने और सभी ने ये विचार किया कि भाई की आज्ञा को तो टालना नहीं है, परंतु हम लोग यदि जुए में हार गए तो हार गए क्या हो गया, राज्य कैसे छोड़ दें, वनवास कैसे चले जाए। बल पौरुष होते हुए हम शत्रु के सामने लड़े नहीं, बातों ही बातों में हम लोग वनवास का कष्ट भोगे, कहां की न्याय की बात। लेकिन जो जो वे गर्म होते हैं युधिष्ठिर महाराज सबको शांत करते हैं। और उस समय वेदव्यास जी महाराज अकस्मात आकर के कहते हैं कि आप लोग दिव्य शस्त्र की प्राप्ति करो। फिर इंद्र है वो हिमालय की तरफ उधर इंद्रलीक पर्वत पर जाता है, पाशुपतास्त्र प्राप्त करता है। उसके बाद सब देवता आते हैं, अपने अपने शस्त्र देते हैं, सब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। यहां तक की कथा कल हो गई। यमराज जी ने, वरुण ने, कुबेर ने, सब ने शस्त्र दिए। आगे वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मे जय, देवताओं के चले जाने पर अर्जुन वहीं रहकर देवराज इंद्र के रथ की प्रतीक्षा कर रहे थे। इंद्र ने कहा था कि मेरा रथ आएगा और मेरे स्वर्ग में तुमको आना है। थोड़ी देर में इंद्र का सारथी मातली दिव्य रथ लेकर उपस्थित हो गया। उस रथ की उज्ज्वल कांति से आकाश का अंधेरा मिट रहा था, बादल तितर बितर हो रहे थे, भीषण ध्वनि से दिशाएं प्रतिध्वनित हो रही थी, उनकी कांति दिव्य थी। रथ में तलवार, शक्ति, गदाएं, तेजस्वी भाले, वज्र, पहियों वाली तोपें, वायु वेग से गोलियां फेंकने वाले यंत्र, तमंचे तथा बहुत से अस्त्र शस्त्र भरे हुए थे। 10,000 वायुगामी घोड़े उसमें जुते हुए थे। कितने? 10,000 घोड़े। उस मायामय दिव्य रथ की चमक धमक से आंखें चौंधिया जाती थी। सोने के दंड में कमल के समान श्याम वर्ण की वैजयंती नामक ध्वजा फहरा रही थी। मातली सारथी ने अर्जुन के पास आकर प्रणाम किया और कहा, हे इंद्रनंदन अर्जुन, श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनके इस प्यारे रथ में विराजमान होकर शीघ्र ही चलिए। सारथी की बात सुनकर अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक गंगा में स्नान किया, मंत्रों का उच्चारण किया, शास्त्रोक्त रीति से देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का तर्पण किया, फिर मंदराचल से आज्ञा मांगकर इंद्र के दिव्य रथ पर सवार हो गए, बैठ गए। उस समय इंद्र का रथ और भी चमक उठा। क्षण भर में वह रथ मंदराचल से उठकर वहां के तपस्वी ऋषि मुनियों की दृष्टि से ओझल हो गया। अर्जुन ने देखा कि वहां सूर्य का, चंद्रमा का तथा अग्नि का प्रकाश नहीं है। हजारों विमान वहां अद्भुत रूप में चमक रहे थे। वे अपनी पुण्य प्राप्त क्रांति से चमकते रहते हैं और पृथ्वी से तारों के रूप में दीपक के समान दिखते हैं। जब अर्जुन ने इस विषय में मातली से प्रश्न किया कि क्या है, तब मातली ने कहा कि वीरवर, पृथ्वी पर से जिन्हें आप तारों के रूप में देखते हैं, वे पुण्यात्मा पुरुषों के निवास स्थान हैं। अब तक वह रथ सिद्ध पुरुषों का मार्ग लांग कर आगे निकल गया। उसके बाद राजर्षियों के पुण्यवान लोक आए, तदनंतर इंद्र की पूरी अमरावती के दर्शन हुए। स्वर्ग की शोभा, सुगंधि, दिव्यता, अभिजन और दृश्य बड़ा ही अनूठा था। यह लोक बड़े बड़े पुण्यात्मा पुरुषों को प्राप्त होता है, जिसने तप नहीं किया, अग्निहोत्र नहीं किया, जो युद्ध से पीठ दिखाकर भग गया, वह इस लोक का दर्शन नहीं कर सकता। जो यज्ञ नहीं करते, व्रत नहीं करते, वेद मंत्र नहीं जानते, तीर्थों में स्नान नहीं करते, यज्ञ और दान से बचे रहते हैं, यज्ञ में विघ्न डालते रहते हैं, क्षुद्र हैं, शराबी हैं, गुरु स्त्रीगामी हैं, मांस भोजी हैं, दुरात्मा हैं, उन्हें किसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन नहीं हो सकता। अमरावती में देवताओं के हजारों इच्छानुसार चलने वाले विमान खड़े थे, सहस्रों इधर उधर जा रहे थे। जब अप्सरा और गंधर्वों ने देखा कि अर्जुन स्वर्ग में आ गए, तब वे उनकी स्तुति सेवा करने लगे। देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षि प्रसन्न होकर उदार चरित्र अर्जुन की पूजा में लग गए, बाजे बजाने लगे। अर्जुन ने क्रमशः साध्य देवता, विश्वेदेव, पवन, अश्विनी कुमार, आदित्य, वसु, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, तुम्बुरु, नारद तथा हा हा हु हु आदि गंधर्वों के दर्शन किए। वे अर्जुन का स्वागत करने के लिए बैठे हुए थे। उनके साथ व्यवहार के अनुसार आगे चलकर आगे जाने पर अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। रथ से उतरकर अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जाकर सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इंद्र ने अपने प्रेमपूर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बिठा लिया और फिर अपनी गोद में बैठाकर प्रेम से सिर सूंघा। संगीत विद्या और सामगान के कुशल गायक तुम्बुरु आदि गंधर्व प्रेम के साथ मनोहर गाथाएं गाने लगे। अंतःकरण को तथा बुद्धि को लुभावने वाली घृताची, मेनका, रंभा, पूर्व चित्ते, स्वयं प्रभा, उर्वशी, मिश्र केसी, दंड गौरी, वरूथिनी, गोपाली, सहजन्या, कुंभयोनी, प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेखा, सहा, मधुस्वरा आदि आदि अप्सराएं नाचने लगी। इंद्र के अभिप्राय के अनुसार देवता और गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य से अर्जुन का सेवा सत्कार किया, उनके पैर धुलवाकर आचमन कराया। इसके अनंतर अर्जुन देवराज इंद्र के खास भवन में गए। वीर अर्जुन इंद्र के महल में ठहरकर अस्त्रों के प्रयोग और उपसंहार का अभ्यास करने लगे। वे इंद्र के प्रिय और शत्रुघाती वज्र का भी अभ्यास करने लगे। उन्होंने अचानक ही घटा छा जाने, गर्जना करने और बिजलियों के चमकने का अभ्यास किया। ऐसा अभ्यास किया अचानक बिजली पड़े, अचानक मेघ गर्जना करे। समस्त अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के अनंतर अर्जुन अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करके स्वर्ग से मर्त्यलोक में जाना चाहते थे, परंतु इंद्र की आज्ञा से अभी वे 5 बरस तक स्वर्ग में रहे। एक दिन अनुकूल अवसर पाकर देवराज इंद्र ने अस्त्र विद्या के मर्मज्ञ अर्जुन से कहा, प्रिय अर्जुन, अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना भी सीखो, साथ ही मर्त्यलोक में जो बाजे नहीं है उन्हें भी बजाना सीखो। अर्जुन ने कहा, हे देवराज इंद्र, गाना बजाना मुझे क्यों सीखना है, मुझे तो युद्ध के शस्त्र दीजिए। मुस्कुराते हुए इंद्र ने कहा, यह भी एक शस्त्र तुम्हारे कभी काम आएगा। इंद्र के मित्रता करा देने पर अर्जुन चित्रसेन से मिलकर गाने बजाने और नाचने का अभ्यास करने लगे। अर्जुन बड़े बुद्धिमान थे, वे इस विद्या में भी अस्त्र शस्त्र के भांति बड़े निपुणता के साथ प्रवीण हो गए। अब अर्जुन को अपनी मां और अपने भाइयों की बहुत याद आने लगी। अकेले में बैठे बैठे वे विवल हो जाते थे। एक दिन की बात है, इंद्र ने देखा कि अर्जुन खुली आंखों से उर्वशी की ओर ताक रहा है, देख रहा है। उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा, चित्रसेन, तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाकर मेरा एक संदेश कहो कि वो अर्जुन से मिले, अर्जुन के पास जाए। चित्रसेन ने उस परम सुंदरी अप्सरा के पास जाकर कहा कि मैं देवराज इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूं, तुम उनका अभिप्राय सुनो। देखो उर्वशी, मध्यम पांडव अर्जुन सौंदर्य में, स्वभाव में, रूप में, व्रत में, जितेंद्रियता में, सभी गुणों में देवताओं में और मनुष्यों में प्रतिष्ठित है, बलवान है, प्रतिभा संपन्न है, विद्या, ऐश्वर्य, तेज, प्रताप, क्षमा, मात्सर्यहीनता, वेद वेदांग ज्ञान तथा अन्य शास्त्रों के अभ्यास में बड़े निपुण हैं। 8 प्रकार की गुरु सेवा और 8 प्रकार के गुणों वाली बुद्धि को खूब जानते हैं। वे स्वयं ब्रह्मचारी और उत्साही तो हैं ही, मातृकुल और पितृकुल से भी बड़े शुद्ध हैं। उनकी अवस्था भी बड़ी तरुण है। जैसे इंद्र स्वर्ग की रक्षा करते हैं, वैसे ही वे बिना किसी की सहायता के पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। वे अपनी नहीं दूसरों की प्रशंसा करते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्याओं को भी स्थूल बात की तरह जान लेते हैं। उनकी वाणी बड़ी मीठी है, मित्रों को खूब खिलाते पिलाते हैं। सत्य प्रेमी, अहंकार रहित, प्रेम पात्र, दृढ़ प्रतिज्ञ, वे अपने सेवकों पर बड़ा प्रेम रखते हैं और गुणों में इंद्र के समकक्ष हैं। तुमने अवश्य ही अर्जुन के गुण सुने होंगे, वे तुम्हारी सेवा से स्वर्ग का सुख प्राप्त करें, इसके लिए तुमको एक मेरी बात माननी चाहिए। उर्वशी ने चित्रसेन का सत्कार किया और प्रसन्न होकर कहा, गंधर्वराज, तुमने अर्जुन के जिन प्रधान प्रधान गुणों का वर्णन किया है उन्हें मैं पहले ही सुन चुकी हूं और मैं उन पर मोहित हो चुकी हूं। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूं और उन्हें पहले ही वर चुकी हूं। अब देवराज की आज्ञा और तुम्हारे प्रेम से उनके प्रति मेरा आकर्षण और भी बढ़ गया है। मैं अर्जुन की सेवा करूंगी, आप जा सकते हैं। चित्रसेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी ने आनंद के साथ सुगंध स्नान किया। वह सुंदर तो थी ही, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण धारण किए, सुगंधित पुष्पों की माला पहनकर उर्वशी उस समय सब प्रकार का श्रृंगार करके सज धज करके मुस्कुराती हुई पवन और मन के समान तेज गति से क्षण भर में अर्जुन के स्थान पर जा पहुंची। वहां द्वारपालों ने अचानक उर्वशी के आने का समाचार अर्जुन के पास पहुंचाया। अर्जुन को आश्चर्य हुआ। उर्वशी अर्जुन के पास पहुंच गई। अर्जुन मन ही मन अनेक प्रकार की शंकाओं में डूबने लगे। जो ही उर्वशी उनके पास आई, अर्जुन ने अपने आंख बंद कर लिए और बड़ी श्रद्धा से उनको प्रणाम किया और गुरुजन के समान आदर सत्कार कर कहने लगे, देवी मैं तुम्हें सिर झुकाकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हारा सेवक हूं, मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है। उर्वशी एकदम अचेत सी हो गई। उसने कहा, अर्जुन ये तुम्हारी क्या भाषा है, तुम्हें मालूम नहीं है देवराज इंद्र की आज्ञा से चित्रसेन गंधर्व मेरे पास आया, उसने मेरे सामने आकर आपके गुणों का वर्णन किया और आपके पास जाने की प्रेरणा दी है। आपके पिता इंद्र और इंद्र चंद्र चित्रसेन गंधर्व की आज्ञा से मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूं। केवल आज्ञा की बात नहीं है, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तभी से मेरा मन आप पर लग गया है, इसलिए बहुत दिनों से मेरी लालसा रही है, आप मुझे स्वीकार कीजिए। उर्वशी की बात सुनकर अर्जुन संकोच के मारे गड़े से जा रहे थे। उन्होंने अपने हाथों से कान बंद कर लिए और बोले, हरे हरे, कहीं ये बात मेरे कान में प्रवेश न कर जाए। देवी निस्संदेह तुम मेरी मां के समान हो, मैं जब इंद्र का पुत्र हूं और आप इंद्र की प्रेयसी हैं तो मेरे लिए आप मां हैं। देव सभा में मैंने तुम्हें निर्मिमेश नेत्रों से देखा था, परंतु मेरे मन में कोई आपके शरीर की सुंदरता आदि का भाव देखकर बुरा भाव नहीं हुआ। मैं यही सोच रहा था कि ओहो, पुरुवंश की यह आनंदमयी मां है, तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खिल उठी। मैं ये देख रहा था कि आपकी नृत्य कला में कैसी प्रवीणता है, मैं अपने को धन्य मान रहा था कि आज मुझे देवलोक में भी मां मिली है। मैं बड़े आनंद के साथ आपके दर्शन करना चाहता था, दर्शन कर रहा था। हे देवी, मेरे संबंध में आपको आगे कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, तुम मेरे लिए बड़ों की भी बड़ी और पूर्वजों की जननी हो, मैं अपनी मां की दृष्टि से आपको क्या कहूं, आप तो मेरे पूर्वजों की भी मां हो। उर्वशी ने हंसते हुए कहा, वीर हम अप्सराएं हैं, अप्सराओं का किसी के साथ मातृपुत्र आदि का संबंध नहीं होता, अप्सराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता, अप्सरा परम स्वतंत्र हैं, हम देव योनियों में हैं, ये व्यवहार आपका पृथ्वी पर हो सकता है, मुझे आप गुरुजन की पदवी पर बैठाते हुए उचित नहीं है, आप मेरे पर प्रसन्न होइए, मेरा त्याग मत कीजिए, मैं आप में बहुत प्रेम रखकर आपके पास आई हूं और आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन ने कहा, देवी मैं तुमसे सत्य सत्य कह रहा हूं, दिशाओं विदिशाओं और जितने देवता गुप्त रूप से वे सब सुन लें, जैसे कुंती माद्री और इंद्र पत्नी सची मेरी माताएं हैं। हे उर्वशी, तुम भी वैसी मेरी पूर्ववंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता से बढ़कर हो। मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुका झुका कर प्रणाम करता हूं। तुम माता के समान मेरे लिए पूजनीय हो और मैं तुम्हारे पुत्र के समान रक्षणीय हूं। अर्जुन की ये बात सुनकर उर्वशी क्रोध के मारे कांपने लगी, टेढ़ी नजरों से अर्जुन को देख करके कहने लगी, अर्जुन, मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर तुम्हारे पास आई और फिर भी तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया, इसलिए जाओ, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा। सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। उस समय उर्वशी के होठ फड़क रहे थे, लंबी सांसें चल रही थी और जो उर्वशी अर्जुन को प्रेम की दृष्टि से देख रही थी वही उर्वशी क्रोध की दृष्टि से देखती देखती अपने स्थान पर लौट गई। अर्जुन बड़े गंभीर, अर्जुन शांत भाव से वहां विराजमान थे। फिर अर्जुन चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ कहा था वो सब कह सुनाया। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही और इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और तनिक हंसते हुए कहा, प्रिय अर्जुन, तुम्हारे जैसे पुत्र पाकर कुंती सचमुच पुत्रवती हुई। तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया। एक बात तुम्हें कहता हूं, उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है इस शाप को तुम बुरा मत मानना, उससे तुम्हारा बहुत बड़ा काम बन जाएगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे उस समय तुम नपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिपकर ये शाप भोग लोगे, फिर तुम्हें वापस पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी और संसार पर ये असर भी पड़ेगा कि अप्सराओं के शाप से कभी धैर्यवान पुरुषों का पतन नहीं हो सकता। तुम्हारे लिए शाप आवश्यक भी था। अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, चिंता मिट गई। गंधर्वराज चित्रसेन के साथ रहकर स्वर्ग के सुख लूटने लगे। जन्मेजय, अर्जुन का यह चरित्र इतना पवित्र है, जो इसका प्रतिदिन श्रवण करता है उसके मन में काम वासना का सर्वथा नाश हो जाता है। वास्तव में अर्जुन का चरित्र ऐसा ही है। उन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमस स्वर्ग में आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन इंद्र के आधे आसन पर बैठे हुए हैं। वे भी एक आसन पर बैठ गए और मनी मन सोचने लगे, अर्जुन को यह आसन कैसे मिल गया? इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया है, कौन से देशों को जीता है जिससे इसे सर्वदेव वंदित इंद्रासन प्राप्त हो गया? एकटक देख रहे थे। देवराज इंद्र ने लोमस मुनि के मन की बात जान ली। उन्होंने कहा, महर्षि, आपके मन में जो विचार पैदा हो रहा है वो मैं समझ रहा हूं, इसका उत्तर देता हूं। यह अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है, यह मनुष्य रूपधारी देवता है। मनुष्य में तो इसका अवतार हुआ है। यह सनातन ऋषि नर है। इसने इस समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। महर्षि नर और नारायण कार्यवश पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हुए हैं। इस समय निवात कवच नामक दैत्य मदोन्मत्त होकर मेरा अनिष्ट कर रहे हैं। वरदान पाकर अपने आप को भूल गए हैं। इसमें संदेह नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे कालिंदी के काली रथ से सर्पों का उच्छेदन किया, वैसे ही दृष्टि मात्र से निवात कवच दैत्यों को अनुचरों सहित नष्ट कर सकते हैं। परंतु इस छोटे से काम के लिए भगवान कृष्ण से क्या कहना, क्योंकि वे तो महान तेज पुंज हैं। उनका क्रोध कहीं जाग उठे तो सारा जगत जलकर भस्म हो सकता है। इस काम के लिए तो ये एक अर्जुन पर्याप्त है। ये निवात कवचों का नाश करके मनुष्य लोक में जाएंगे। महर्षि, आप पृथ्वी पर जाकर काम्यक वन में रहने वाले दृढ़ प्रतिज्ञ धर्मात्मा युधिष्ठिर से मिलिए और कहिए कि वे अर्जुन की तनिक भी चिंता न करें, और साथ में यह भी कह दीजिएगा कि अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है। वह दिव्य अस्त्र शस्त्रों को तो जानने वाला है ही, नृत्य गायन और वादन कला में बड़ा निपुण हो गया है। आप अपने भाइयों के साथ एकांत और पवित्र तीर्थों की यात्रा कीजिए। तीर्थ यात्रा से सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे और आप पवित्र होकर राज्य भोगेंगे। ब्रह्मर्षि, आप बड़े तेजस्वी और समर्थ हैं, इसलिए आप पृथ्वी पर विचरते हुए हमारे पांडवों का पूरा ध्यान रखिएगा। पांडवों के पास आप जैसे ऋषि मुनियों का आशीर्वाद सबसे बड़ा बल है। इंद्र की बात सुनकर लोमस काम्यक वन में पांडवों के पास आ गए। वैशंपायन ने कहा कि हे जन्मे जय, इधर हस्तिनापुर में राजा धृतराष्ट्र को अर्जुन के स्वर्ग में निवास करने का समाचार भगवान वेदव्यास से प्राप्त हुआ। उनके जाने के बाद धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय अब क्या करें, मैंने अर्जुन का सब समाचार पूर्ण रूप से सुन लिया है, क्या तुम्हें भी इस बात का पता है? क्या कहूं संजय, मेरा पुत्र दुर्योधन बड़ा मंद बुद्धि वाला है, इसी से वह बुरे कर्मों में और विषय भोगों में पड़ा रहता है। वह अपनी दुष्टता के कारण राज्य का नाश कर डालेगा। संजय, धर्मराज युधिष्ठिर बड़े महात्मा हैं, वे साधारण बातचीत में भी सत्य बोलते हैं। उन्हें अर्जुन सा वीर योद्धा प्राप्त है, उनका राज्य त्रिलोकी में हो सकता है, ऐसे मेरे मन में शंकाएं हो रही हैं। जिस समय अर्जुन अपने पैणे बाणों का प्रयोग करेगा, उस समय उनके सामने कौन खड़ा रहेगा? संजय, क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है। संजय ने कहा, महाराज आज आपने दुर्योधन के विषय में जो कुछ कहा है, पहले से ही यदि आप ऐसा समझ लिए होते तो आज आपके सामने चिंता की रेखाएं नहीं आती। अभी आपने जो दुर्योधन के संबंध में कहा बिल्कुल सत्य है। अर्जुन के संबंध में मैंने और भी कुछ सुना है, आपकी आज्ञा हो तो सुना दूं। धृतराष्ट्र ने कहा, और तुमने क्या सुना है? मैंने बहुत कुछ सुना है, कहीं आपके चित्त में भय पैदा न हो जाए इसलिए हम चुप थे। नहीं संजय, जो तुमने सुना है वो सुनाओ। संजय ने कहा, अर्जुन के संबंध में मैंने ये सुना है कि उन्होंने युद्ध में अपने धनुष का बल दिखाकर भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया है। अर्जुन की परीक्षा करने के लिए देवाधिदेव भगवान शंकर स्वयं भील का वेश धारण करके उनके पास आए थे और अर्जुन से उन्होंने युद्ध किया था, और उस युद्ध में प्रसन्न होकर उन्होंने अर्जुन को अपना पाशुपतास्त्र दिया था। अर्जुन की तपस्या से प्रसन्न होकर सब लोकपालों ने आकर अर्जुन को दर्शन दिए, दिव्य अस्त्र दिए। ऐसे भाग्यशाली अर्जुन के सिवा कौन इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त कर सकता है। अर्जुन का बल अपार है, शक्ति अपरिमित है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय मेरे पुत्रों ने पांडवों को जितना जितना कष्ट दिया उतना उतना पांडवों की आत्मबल और शरीर बल, दैव बल और सब प्रकार का बल बढ़ता चला गया। जिस समय बलराम और श्री कृष्ण पांडवों की सहायता करने के लिए यदुकुल के योद्धाओं को उत्साहित करेंगे, उस समय कौरव पक्ष का कोई भी वीर उनका सामना नहीं कर सकेगा। उनके धनुष की टंकार और भीमसेन की गदा का वेग इस धरती पर कौन सह सकता है। हमारे पक्ष में ऐसा कोई राजा नहीं है। मैंने दुर्योधन की बातों में आकर अपने हितेशी पुरुषों की हित भरी बातें नहीं मानी। जान पड़ता है मुझे बहुत बड़ा पश्चाताप भोगना पड़ेगा। संजय ने कहा, राजन अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, परंतु आप जितना सोचते हो और लोगों को बोलते हो वो सब बातें दुर्योधन के सामने आने पर और उनकी उसकी मुंह भरी बातों में आने पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, लाचार हो जाते हो। आपने अभी तक स्नेहवश अपने पुत्र को बुरे काम से रोका नहीं, उपेक्षा करते रहे, आखिर उसका भयंकर फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा ना। जिस समय पांडव कपट द्यूत में हार कर पहले पहले काम्यक वन में गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर उनको आश्वासन दिया था, यह भी हमारे पास समाचार है। उन्होंने तथा धृष्टद्युम्न राजा विराट, धृष्टकेतु तथा केकय आदि ने वहां पांडवों से जो कुछ कहा था वो दूतों से मालूम होने पर मैंने आपकी सेवा में संक्षेप में तो कहा था, परंतु फिर भी आपने कोई विचार नहीं किया। आप विचार कीजिए, वे यदि सब मिलकर हम पर चढ़ाई करेंगे उस समय उनसे कौन सामना करेगा। जन्मेजय ने पूछा, हे वैशंपायन जी, महात्मा अर्जुन जब अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्रलोक चले गए तब पीछे से पांडवों के क्या हालचाल थे। वैशंपायन जी ने कहा कि जन्मेजय उन दिनों पांडव काम्यक वन में निवास कर रहे थे। वे राज्य के नाश और अर्जुन के वियोग से बड़े दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, पांडव और द्रौपदी इसी संबंध में कुछ बातें कर रहे थे। भीमसेन ने राजा युधिष्ठिर जी से कहा, भाई जी अर्जुन पर ही हम लोगों का सब भार है, वही हमारे प्राणों का आधार है, वह इस समय आपकी आज्ञा से अस्त्र विद्या सीखने के लिए गया हुआ है। इसमें संदेह नहीं है कि यदि अर्जुन का कहीं कुछ अनिष्ट हो गया तो राजा द्रुपद, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, भगवान श्री कृष्ण और हम लोग भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अर्जुन के बाहुबल के आधार पर ही हम लोग ऐसा समझते हैं कि शत्रु हमसे हारे हुए हैं, पृथ्वी हमारे वश में है, हमारे बाहों में है, भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक और रक्षक हैं। हमारे मन में कौरवों को पीस डालने की जो बार बार क्रोध की ज्वाला उठती है उसके कारण भी हमारे अर्जुन का बल है, परंतु हम आपके कारण उसे पी पी कर रह जाते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की सहायता से कर्ण आदि सब शत्रुओं को मार डालेंगे और अपने बाहुबल से सारी पृथ्वी जीत कर राज्य कर लेंगे। भाई जी, जब तक दुर्योधन पृथ्वी को पूर्ण रीति से अपने वश में कर ले उससे पहले ही उसे और उसके कुटुंब को मार डालना चाहिए। शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि कपटी पुरुष के साथ यदि कपट करके भी यदि उसको मार डाले तो कोई दोष नहीं है। इसलिए यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आग की तरह भभक कर वहां जाऊं और दुर्योधन का नाश कर डालूं। भीमसेन की बात सुनकर युधिष्ठिर ने पीठ थपथपाते हुए शांत भाव से माथा सूंघते हुए कहा, मेरे बलशाली भाई भीम, 13 बरस पूरे हो जाने दो, फिर तुम और अर्जुन दोनों मिलकर दुर्योधन का नाश करोगे। मैं असत्य नहीं बोलता हूं, क्योंकि मुझमें असत्य की भावना पैदा ही नहीं होती। अभी तक जो बात तुम कहते हो वो अभी इस समय ठीक नहीं है। भीमसेन, ये तपस्या के क्षण हमको आगे बहुत बड़ी शिक्षा देने वाले बनेंगे, सारे संसार को भी शिक्षा देने वाले बनेंगे। तुम बिना कपट के दुर्योधन को मारो, उसके सहायकों का नाश करो, तब तुम्हारी वीरता है। वीर और कपट, इन दोनों का कोई मेल ही नहीं है। जिसको अपने बाहुबल पर भरोसा है वो समक्ष युद्ध में लड़ेगा, कपटता क्यों करे। वो इस प्रकार भीमसेन को समझा ही रहे थे कि महर्षि बृहदश्व उनके आश्रम में आ पहुंचे। जन्मेजय महर्षि बृहदश्व को आते देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका शास्त्र विधि से पूजन किया, विश्राम करवाया। युधिष्ठिर उनसे अपना वृत्तांत कहने लगे। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, कौरवों ने कपट बुद्धि से जो कुछ किया है उसका फल उनको भोगना पड़ेगा, क्या हुआ। युधिष्ठिर ने सारी बातें बताते हुए कहा कि हे महर्षि, कौरवों ने सबसे पहले हमको जुआ खेलने की आज्ञा के साथ बुलाया। मैं अपने बड़े ताऊ की आज्ञा मानकर छल के साथ द्यूत क्रीड़ा में गया और वहां मुझे बुलाकर छल के साथ जुआ खेला और मुझ अनजान को हराकर मेरा सर्वस्व छीन लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी प्राणप्रिया द्रौपदी को घसीटकर भरी सभा में अपमानित किया और अंत में हमको काली मृगछाला ओढ़ाकर घोर वन में भेज दिया। हे महर्षि, आप ही बताइए, इस पृथ्वी पर मुझसे भाग्यहीन कोई दूसरा राजा है क्या? ऐसा कष्ट किसी को भी संसार में भोगा गया, किसी के द्वारा ऐसा कष्ट भोगा गया? कोई मेरे जैसा दुखी आपको संसार में दिखाई या सुनाई दिया? यदि ऐसा हो तो आप मुझे बताओ कि किसके सामने ऐसा दुख आया। महर्षि बृहदश्व ने कहा, धर्मराज, आपका ये कहना ठीक नहीं है कि मुझसा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंद भाग्य राजा का वृत्तांत सुनाता हूं, तुम्हारी इच्छा हो तो सुनाऊं। युधिष्ठिर के आग्रह करने पर बृहदश्व ने कहना चालू किया, हे धर्मराज युधिष्ठिर, निषिद्ध देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ और ब्राह्मण भक्त थे। उनके पास अपार सेना थी, वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे, वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्राप्त करके उनके वरदान से 4 संतान प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों का नाम था दांत और दमन, और पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती, नेत्र बड़े विशाल, देवताओं और यक्षों में वैसी सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ से निश्र देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। निश्र देश में विदर्भ में आने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप गुण और पवित्र चरित्र का बखान करते। इससे दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग पैदा हो गया। एक दिन राजा नल अपने महल के बगीचे में कुछ हंसों को देख रहे थे। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, महाराज मुझे छोड़ दीजिए, हम तो स्वेच्छाचारी हैं, उड़ने वाले हैं। यदि आप मुझे छोड़ देंगे तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का वर्णन करेंगे और वो ऐसे वर्णन करेंगे कि वो आप ही को ही वरेगी। नल बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने हंस को छोड़ दिया और वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। इन हंसों को पकड़ने के लिए द्रौपदी भी, ये दमयंती भी दौड़ी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वही बोल उठता, अरे दमयंती सुनो, निशित देश में एक नल नामक राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान परम सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। मानो वह मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म रूप सब सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को खूब घूम घूम करके देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बड़ी सुंदर होगी। दमयंती ने बड़े अनुराग के साथ कहा, हंस तुम नल से भी जाकर मेरे विषय में ऐसी बात बोलना। हंस ने निश्चित देश लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंस के मुख से राजा नल की कीर्ति सुनकर बड़ा प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि रात दिन वह नल का ध्यान करती रहती थी। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भराज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ है। राजा भीमक ने अपने पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दिया और सूचित किया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधारकर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश देश के नरपति, हाथी, घोड़े, रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे और खूब राजाओं की वहां भीड़ हो गई। भीमक ने सबका स्वागत किया, सबकी समुचित व्यवस्था की। इधर देवर्षि नारद और देवर्षि पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिला। इंद्रादि सभी लोकपाल अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के संबंध में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देखा कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित थे। उन्होंने अपने ज्ञान से पहचान लिया कि ये नल है। उन्होंने अपने विमान को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं, हम लोग आपकी सहायता करने के लिए आए हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा करूंगा। फिर पूछा आप लोग कौन हैं, मुझे दूत बनाकर आप कौन सा काम करना चाहते हैं। इंद्र ने कहा हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूं और ये अग्नि वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के लिए यहां आए हैं, आप दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र वरुण अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं, इनमें से तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा हे देवराज, वहां आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही तो प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहां भेजें ये उचित नहीं है, क्योंकि जिस दमयंती को आप प्राप्त करना चाहते हो उसको मैं भी तो प्राप्त करना चाहता हूं, मैं उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं उनके पास जाकर कैसे कह सकता हूं, आप मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा नल, अब तुम अपनी बात से नहीं मुकर सकते, क्योंकि तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके होगी जो आप कहेंगे वो काम करूंगा, तो करना पड़ेगा। नल ने कहा अच्छी बात है, पर राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे कह सकूंगा। इंद्र ने कहा जाओ, तुम वहां जा सकोगे, हम तुमको ऐसी शक्ति देते हैं। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बेरोक टोक प्रवेश कर लिया और दमयंती को देखा। दमयंती और सखियां भी उसको देखकर अवाक रह गईं। वे ऐसे अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गईं और लज्जित होकर कुछ बोल भी नहीं सकी। दमयंती ने अपने को संभाल कर राजा नल से कहा वीर, तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो, पहले अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, और आपको द्वारपालों ने देखा नहीं या देखा हो तो रोका नहीं, या उनसे कोई चूक हो गई, क्या बात है। यदि उनसे चूक हो गई तो मेरे पिता उन्हें कड़े से कड़ा दंड दे सकते हैं। कौन है आप? नल ने कहा कल्याणी, मैं नल हूं, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूं। सुंदरी, इंद्र अग्नि वरुण और यम ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं, तुम इनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वरण कर लो, यही संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूं। उन देवताओं के प्रभाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश करने लगा तब मुझे कोई देख भी नहीं सका, तुम्हारे द्वारपाल मुझे टोकते तो कैसे टोकते, मैंने देवताओं का संदेश कह दिया है, अब जो आपकी इच्छा हो वो करो। दमयंती कुछ देर शांत खड़ी रही और बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम किया मन ही मन में, और मंद मंद मुस्कुराकर नल ने कहा, नल से कहा दमयंती ने, नरेंद्र आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं आप ही का वरण करूं, क्योंकि मैंने हृदय से आपको अपना सर्वस्व मान लिया है, आप मुझ पर विश्वास कीजिए और प्रेम कीजिए। मैंने जिस दिन से हंसों से बात सुनी है उसी दिन से मैंने आपको अपना पति मान लिया है, आपके लिए ही राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है, यदि आप मुसदासी की प्रार्थना को अस्वीकार कर दोगे तो मैं या तो विष खाकर या आग में जलकर या पानी में डूबकर या फांसी लगाकर आपके लिए मर जाऊंगी। राजा नल ने कहा थोड़े गंभीरता से विचार करो दमयंती, जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी हैं, अब तुम मुझ मनुष्य से ही क्यों कह रही हो, उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणु के समान भी तो मैं नहीं हूं, तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ, देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु होती है, वे सामर्थ्यवान देवता हैं, तुम मेरी रक्षा करो और उनका वरण करो। यदि तुमने मेरा वरण कर लिया तो ये चारों देवता मुझे जीवित नहीं रखेंगे। नल की बात सुनकर एक बार दमयंती घबरा गई, उसके नेत्रों से आंसू छलक आए। वे कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके यही बात कहूंगी कि मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है, मैं इस स्वीकृति को किसी भी प्रकार बदल नहीं सकती, यह मैं सत्य शपथ खाकर कह रही हूं। उस समय दमयंती का शरीर कांपने लग गया और हाथ जुड़े हुए से रह गए। राजा नल ने कहा, अच्छा यदि ऐसी ही बात है तो ऐसा ही करो, परंतु यह तो बताओ कि मैं यहां उनका दूत बनकर संदेश पहुंचाने के लिए आया हूं, यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूं तो कितनी बुरी बात है। यदि तुम मुझे अपने जयमाला अभी पहना दोगे ये तो कार्य ठीक नहीं है, अभी तो केवल दूत बनकर आया हूं, मैं अपना स्वार्थ बीच में नहीं बना सकता। यदि मैं इस समय तुम मुझे वरण करो और मैं जयमाला स्वीकार करूं तो ये धर्म के विरुद्ध तो बात नहीं होगी, साक्षात धर्म के विरुद्ध बात है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। दमयंती ने गदगद भाव से कहा, नरेश्वर एक निर्दोष उपाय है, उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप लोकपालों के साथ स्वयंवर पे मंडप में आवे और उनके सामने ही मैं आपको वरण कर लूंगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। राजा नल देवताओं के पास गए, देवताओं के पूछने पर कहा कि मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया, बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, आप लोगों के प्रभाव से वे मुझे देख नहीं पाए, केवल दमयंती और उनकी सखियों ने ही मुझे देखा, वे आश्चर्य में पड़ गईं। मैंने आप लोगों का वर्णन किया परंतु वह तो आप लोगों को न चाहकर मुझे ही चाहने पर तुली हुई है, उसने कहा कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आवे, मैं उनके सामने आपको वरण कर लूंगी, तब देवताओं का कोई अपराध नहीं रहेगा। मैंने आप लोगों के सामने सब बात कह दी है, हे देवताओं अब क्या करना है सो आप विचार कर लो। इधर राजा भीमक ने शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा, लोगों को बुलावा भेजा, सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठ गए, पूरी सभा भर गई। जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए तब परम सुंदरी दमयंती अपनी अंग कांति से राजाओं के मन और नेत्रों को आकर्षित करती हुई रंग मंडप में एक विद्युत के समान चमकती हुई आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा, दमयंती परिचय सुनकर आगे बढ़ती गई। आगे एक ही स्थान पर एकदम नल के समान आकार बनाए हुए वेशभूषा के पांच राजा ही बैठे हुए थे इकट्ठे होकर। दमयंती को संदेह हो गया कि ये पांच एक जैसे हैं, इनमें राजा नल कौन होगा। वह जिसकी ओर देखती थी वही नल के समान जान पड़ता था, नल ही का विचार करती थी, इसलिए विचार करने लगी, हे देवताओं मैं कैसे पहचानूं कि ये राजा नल है, मेरे पास जानने की शक्ति नहीं है। अंतर मन से प्रार्थना की, दमयंती के ऐसे शुभ अवसर पर प्रेम के आंसू गिरने लगे। अंत में देव दमयंती ने यही निश्चय किया कि अपने को देवताओं की शरण में जाना चाहिए। दमयंती हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी, देवताओं हंसों के मुख से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति रूप से वरण कर लिया है, मैं मन से वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती हूं, देवताओं ने निषधेश्वर नल को ही मेरा पति बना दिया है तथा मैंने नल की आराधना के लिए कितने कितने व्रत और उपवास भी किए हैं। मेरी इस सत्य प्रतिज्ञा के बल पर देवता लोग मुझे बता दे कि ये नल है, क्योंकि आप में कौन नल है मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। हे ऐश्वर्यशाली लोकपालो, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दो जिससे मैं पुण्य श्लोक नरपति नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती का ये आर्त विलाप सुना, देवताओं का हृदय बदल गया। उन्होंने दमयंती का दृढ़ निश्चय, सच्चा प्रेम, आत्मशुद्धि, पवित्र बुद्धि, पवित्र भक्ति एवं नल परायणता को देखकर उन्होंने एक ऐसी शक्ति दी कि जिससे वह दमयंती देवताओं को और मनुष्यों को अलग अलग समझ सके। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, देवताओं की पलकें गिरती नहीं है, देवताओं की मालाएं कुमलाती नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है, देवता स्थिर रहते हैं, हिलते डुलते नहीं है, देवता धरती को छूते नहीं है, इधर नल के शरीर की छाया पड़ती है, माला कुमला गई है, शरीर पर धूल और पसीना है, पलकें बराबर गिर रही हैं, धरती को छूकर ही बैठे हैं। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया और फिर धर्म के अनुसार भरी सभा में उन्होंने अपनी जयमाला नल के गले में अर्पित कर दी और सब देवता महर्षि साधु साधु कहने लगे। सबको बड़ा आनंद का अनुभव हुआ और प्रेम से देवता लोगों ने दमयंती को आशीर्वाद दिया। राजा नल ने आनंदातिरेक से दमयंती का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण न करके मुझे वरण किया है, इसलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा, यह मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य बात कहता हूं। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्रादि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने नल को 8 वरदान दिए। इंद्र ने कहा, नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, नल, जहां तुम मेरा स्मरण करोगे मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाशमय लोग तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, नल, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहां तुम जाओगे वहां जल प्रकट हो जाएगा, तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार चारों देवताओं ने दो दो वरदान देकर अपने अपने लोक की यात्रा की। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीमक ने प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधिपूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिन तक विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर में रहे। तदनंतर भीमक की अनुमति प्राप्त करके वे अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र और इंद्रसेना नाम कन्या भी पैदा हुई। वृहदश्व कहते हैं, युधिष्ठिर, जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोक में जा रहे थे, उस समय उनके मार्ग में कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, ए कलयुग कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने जा रहा हूं। इंद्र ने हंसकर कहा, अरे क्या बात करते हो, वह स्वयंवर तो पूरा ही हो गया। दमयंती ने राजा नल का वरण भी कर लिया, हम भी तो उस स्वयंवर में थे, हम लोग तो ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, ओ तब तो बड़ा भारी अनर्थ हो गया, उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, उसको जरूर दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, कलयुग दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके नल का वरण किया है, वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और दमयंती के योग्य ही है, वे समस्त धर्मों के मर्मज्ञ और सदाचारी हैं, उन्होंने इतिहास पुराणों के सहित वेदों का अध्ययन किया है, वे धर्मानुसार यज्ञ में देवताओं को तृप्त करते हैं, कभी किसी को सताते नहीं हैं, सत्यनिष्ठ और दृढ़ निश्चयी हैं, उनकी चतुरता धैर्य ज्ञान तपस्या पवित्रता शम दम लोकपालों के समान है, उनको शाप देना तो नरक की धधकती आग में गिरने के समान है, ध्यान रखना। यह कहकर देवता लोग चले गए। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा, क्योंकि नल ने दमयंती का वरण करके मेरी इच्छा को पूर्ण नहीं होने दिया है, तो मैं भी नल को राज्य से च्युत कर दूंगा, तब वह दमयंती के साथ रह नहीं सकेगा, इसलिए तुम भी जुए के पास में प्रवेश करके जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करो। द्वापर ने कहा, कलयुग क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? इससे क्या हम लोगों को संसार के सामने अपमानित नहीं होना पड़ेगा? कलयुग ने कहा, हे द्वापर, काले में नई काली मां क्या आती है, मैं तो यूं ही बदनाम हो चुका हूं, और मेरे संसर्ग से तुमको भी थोड़ी बदनामी भोगनी पड़ेगी तो पड़ेगी, पर अपना काम बन जाएगा। चलो अपने सब नल की राजधानी में आते हैं। अब ये द्वापर और कलयुग दोनों के दोनों राजधानी में आ गए। 12 बरस तक इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल के द्वारा कोई अपराध हो जाए, कोई दोष हो जाए, फिर हम नल को अपने चक्र में लें, लेकिन कोई दोष दिखाई नहीं दिया। परंतु एक दिन, ध्यान से सुनना, एक दिन राजा नल संध्या के समय लघु शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। पेशाब करके पैर जरूर धोने चाहिए, पैर धोया नहीं, संध्या वंदन करने के बैठ गए। बस कलयुग को मौका मिल गया। नल की अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया और साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया, पुष्कर के पास, और बोला, ये पुष्कर, वही कलयुग प्रवेश इधर भी कर गया और दूसरा रूप बनाकर पुष्कर के पास गया। पुष्कर था नल का छोटा भाई। पुष्कर, तुम नल के साथ जुआ खेलो और मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीत कर निषिद्ध देश का राज्य प्राप्त कर लो। पुष्कर उसकी बातें में आ गया, जाकर नल के पास गया। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उसके साथ हो लिया। जब पुष्कर ने राजा नल से बार बार जुआ खेलने का आग्रह किया, तब राजा नल दमयंती के सामने अपने भाई की बार बार की ललकारें नहीं सही, उन्होंने उसी समय में पासा खेलने का निश्चय कर लिया, क्योंकि उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था। इसलिए राजा नल दाव में सोना चांदी रथ वाहन आदि जो कुछ लगाते हारते गए, जैसे युधिष्ठिर तुम हार रहे थे। कौन बोल रहे हैं? वृहदश्व नाम के ऋषि। किसको? पांडवों को, युधिष्ठिर को। क्यों? युधिष्ठिर ने पूछा कोई मेरे जैसा हुआ क्या, वो बताने के लिए। प्रजा और मंत्रियों ने बड़ी व्याकुलता के साथ राजा नल से मिलकर जुए को रोकना चाहा और आकर फाटक के सामने खड़े हो गए। महाराज जुआ मत खेलिए, बड़ा अनर्थ है। उनका अभिप्राय जानकर द्वारपाल रानी दमयंती के पास गए और बोला, महारानी जी आप महाराज से निवेदन कीजिए, आप धर्म और अर्थ के तत्वज्ञ हैं, आपकी सारी प्रजा आपका दुख सहन न करने के कारण दरवाजे पर आकर खड़ी है, आप जुआ बंद करो। दमयंती स्वयं आंख दुख के मारे दुर्बल और अचेत सी होती जा रही थी। उसने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से महाराज के सामने निवेदन किया, स्वामीन, नगर की राजभक्त प्रजा और मंत्रिमंडल के लोग आपसे मिलने आए हैं, ड्योढ़ी पर खड़े हैं, आप उनसे मिल लीजिए, पासों के दाव में रखा क्या है। परंतु नल कलयुग के आवेश के कारण कुछ नहीं बोले। मंत्रिमंडल और प्रजा के लोग शोकग्रस्त होकर लौट गए। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा। राजा नल बार बार हारते गए। राजा नल जुए में जो पासे फेंकते वे बराबर उनके प्रतिकूल पड़ते, सारा धन हाथ से निकल गया। जब दमयंती को इस बात का पता चला तब उसने बृहत सेना नाम की धाय के द्वारा राजा नल के सारथी वार्ष्णेय को बुलाया और उससे कहा, सारथी तुम राजा के प्रेम पात्र हो, यह बात तुमसे छिपी नहीं है कि महाराज बड़े संकट में पड़ गए हैं, इसलिए तुम घोड़ों को रथ में जोड़ लो और मेरे दोनों बच्चों को रथ में बैठाकर कुंडिन नगर में ले जाओ। तुम रथ और घोड़ों को भी वहीं छोड़ देना, फिर तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां रहना, नहीं तो कहीं दूसरी जगह चले जाना। तुम यहां मत आना, क्योंकि हम लोगों की दुर्दशा तुम्हारे से देखी नहीं जाएगी। सारथी ने दमयंती के कहने के अनुसार मंत्रियों से सलाह करके बच्चों को कुंडिनपुर पहुंचा दिया, रथ और घोड़े भी वहीं छोड़ दिए और वहां से पैदल ही चलकर वह अयोध्या की तरफ जा पहुंचा और वहीं ऋतुपर्ण राजा के पास सारथी का काम करने लगा। वार्ष्णेय सारथी के चले जाने के बाद पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का धन तो हर ही लिया था, अब राज्य भी हर लिया। उसने नल को संबोधित करते हुए और हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे? और कुछ तुम्हारे दाव पर लगाने के लिए कुछ है क्या? दमयंती को भी दाव पर लगाने योग्य समझते हो तो खेलो। नल का हृदय फटने लगा। वे पुष्कर से कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्राभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकल गए। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल के मित्र और संबंधियों को बड़ा शोक हुआ। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। अब भय के मारे नगर के लोग अपने राजा नल का सत्कार तक न कर सके, कोई जाकर उनसे बात न कर सके। राजा नल 3 दिन 3 रात तक अपने नगर के पास केवल पानी पीकर रहे। 4th दिन उन्हें बड़ी भूख लगी। फिर उन्होंने फल मूल खाकर वहां से आगे की यात्रा की। एक दिन राजा नल ने देखा कि बहुत से पक्षी उनके पास बैठे हैं, उनके पंख सोने के समान चमक रहे हैं। नल ने सोचा कि इनकी पंख से कुछ धन मिल जाएगा, ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उन पर अपना पहना हुआ वस्त्र उसको डाल दिया। लेकिन पक्षी उस वस्त्र को ही लेकर उड़ गए। अब नल नंगे हो गए, बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचा किए खड़े रहे। उड़ते हुए पक्षियों ने कहा, लोभी, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमको तो बड़ी दया और दुख दया आ रही थी, दुख हो रहा था, और तू उसी वस्त्र से हमको पकड़ने लग गया। ले, अब हम तेरे शरीर पर का वस्त्र लिए जा रहे हैं। तुम्हें मालूम है हम कौन है? हम पक्षी नहीं है, जो जुए के पासे थे वो पासे ही हम पक्षी बनकर आए हैं। और खेलोगे जुआ? और हाथ में पासे रखोगे? रखोगे तो ऐसे दशा तुम्हारी होगी। नल बड़ा संकोच में पड़ा। दमयंती से उसने सब बात कह दी। इसके बाद नल ने कहा, प्रिये, तुम देख रही हो यहां बहुत से मार्ग हैं। एक अवंती की ओर जाता है, दूसरा ऋक्षवान पर्वत होकर दक्षिण देश को जाता है, इधर सामने विंध्याचल पर्वत है, यह पयोष्णी नदी समुद्र में जाकर मिलती है, ये महर्षियों के आश्रम हैं। सामने का रास्ता विदर्भ देश को जाता है, यह कौशल देश का मार्ग है। इस प्रकार राजा नल दुख और शोक से भरकर बड़ी सावधानी के साथ दमयंती को भिन्न भिन्न मार्ग और आश्रम बतलाने लगे। इतने में दमयंती फबक फबक कर रोने लगी और कहने लगी, स्वामी, क्या सोच रहे हैं? मेरा शरीर फट रहा है, कलेजे में कांटे गड़ रहे हैं, पिछली बातों को याद कर करके मेरा हृदय टूट टूट हो रहा है। कहां गया आपका राज्य? कहां गया वैभव? आज शरीर पर वस्त्र तक नहीं है। थके मांदे भूखे प्यासे व्यक्ति की व्यक्ति होकर घूम रहे हैं। कहां तो आप राजा होकर घूमते थे, और आज आप एक सामान्य व्यक्ति होकर घूम रहे हैं। क्या मैं आपको इस निर्जन वन में छोड़कर अकेली कहीं जा सकती हूं, जो आप मुझे इतना मार्ग बताते हो कि इधर चली जाओ उधर चली जाओ? क्यों? मैं आपके साथ रहूंगी, आपके साथ जब महलों में रह सकती हूं, सुख अवस्था में रह सकती हूं, तो क्या पत्नी दुख आने पर पति को छोड़ देगी? दुख के अवसरों पर पत्नी पुरुष के लिए औषध का काम करती है, वो पति को धैर्य दिलाती है, पति के दुख को कम करती है, ये बात वैद्य भी बोलते हैं। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है, पत्नी मित्र है, पत्नी औषध है, परंतु मैं तो तुम्हारा त्याग करना नहीं चाहता, तुम ऐसा संदेह क्यों कर रही हो? मैंने तो अभी मार्ग बताया है। दमयंती बोली, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं तो फिर मार्ग क्यों बतला रहे हैं कि ये विदर्भ देश में जाता है? मेरे पियर का मार्ग क्यों बताया? मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते, फिर भी इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, तभी तो आप जुआ खेले, तभी तो आप हमारी बात नहीं माने, इसलिए मुझे बार बार शंका होती है। आपके मार्ग बताने से मेरा मन पीड़ित होता है। यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ रहें, उसमें क्या हर्ज है? मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहीं रहो। नल ने कहा, देखो प्रिय, बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारे पिता एक राजा हैं और मैं भी एक राजा था। इस समय मैं संकट में पड़ा हूं, इसलिए उनके पास जाकर रहना अच्छा नहीं लगता। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदनंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर वन में इधर उधर घूमते रहे और भूख प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और वहां ठहर गए। धर्मशाला में आकर ठहर गए। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।